रूढ़ियुक्तियाँ, स्टीरियोटाइप्स। दैनिक जीवन में हम यह देखते हैं कि लोगों के विषय में सुनिश्चित सूचनाएं मिलती हैं, जैसे वह क्षत्रिय है, अध्यापक है अथवा बुजुर्ग है। उस व्यक्ति के संबंध में दूसरी सूचनाओं के अभाव में हम उसका मूल्यांकन करते हैं। व्यक्तियों की इस प्रकार की श्रेणियों के आधार पर मूल्यांकन होता है तथा इसी पर उनके साथ अंतःक्रिया भी निर्भर करती है। यदि व्यक्ति के मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है तो व्यक्ति की श्रेणी सामाजिक रूढ़ियुक्तियों के रूप में की जाती है। रूढ़ियुक्तियां शब्द का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में सर्वप्रथम 1920 में हुआ था। मनोविज्ञान में इसका प्रयोग उन विचारों तथा वृत्तियों के लिए किया जो एक बार जागृत होते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र एवं प्रतिमा अंकित करते देते हैं। समाज मनोविज्ञान में मानसिक प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। किम्बल यंग ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है, इट इज बेस्ट डेफिनाइड बाय फॉल्स क्वालिफिकेशन कॉन्सेप्ट टू विच एस ए रूल सम स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग टोन ऑफ लाइक और डिसलाइक अप्रूवल ऑफ डिसअप्रूवल इज अटैच्ड। इस परिभाषा सबसे अच्छे रूप में इस प्रकार की जा सकती है कि यह एक ऐसा संप्रत्यय है जो लोगों का मिथ्या वर्गीकरण कर देता है तथा इसके साथ हमारी रुचियां तथा अरुचि तथा स्वीकृति तथा अस्वीकृति को तीव्र संवेगात्मक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। चार्ल्स बर्ड ने रूढ़ियुक्तियों के संदर्भ में लिखा है, स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स और परसेप्शन और मैग्निफिक अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज हैविंग देयर ओरिजिन प्रिलिम इन फीलिंग एंड इमोशन रेदर देन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमिलरिटिंग इंट्रीमेशन। समाज मनोविज्ञान में रूढ़ियुक्तियों से मानसिक चित्र का बोध होता है। किसी व्यक्ति अथवा समूह के संदर्भ में एक चित्र बन जाता है तथा व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करता है। सैक्रार्ट एवं ब्रेकमन के अनुसार रूढ़ियुक्तियाँ सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य हैं। रूढ़ियुक्तियों में लोग तीन कार्य करते हैं। पहला, ये व्यक्तियों की श्रेणी की पहचान करते हैं, जैसे सिपाही, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि। दूसरा, वे उस श्रेणी के व्यक्तियों की विशेषताओं को एक रूपता देखते हैं। तीसरा, उस श्रेणी में जो भी लोग आएंगे उनमें से विशेषताएँ होंगी। व्यक्तियों में बहुत सी विशेषताएँ पाई जाती हैं। समाज की उन विशेषताओं में कुछ को चुनकर उसके आधार पर व्यक्तियों की पहचान करता है और दूसरी विशेषताओं को वही भुला देता है। जिन विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान हो जाती है वे शारीरिक, जातिगत, समूह, संगठन अथवा समाज की सदस्यता से संबंधित हो सकती हैं। कैंपवेल एवं लेवाइन ने बताया है कि दो समूहों की विशेषताओं में जितना अधिक अंतर होगा एक समूह में दूसरे के प्रति उतने ही अधिक रूढ़ियुक्तियां पाई जाएंगी। उदाहरण के लिए श्वेत लोग अश्वेतों के प्रति अथवा अश्वेत लोग श्वेतों के प्रति रूढ़ियुक्तियों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनमें एक ऐसी विशेषता पाई जाती है उन्हें हम एक श्रेणी में रखते हैं, जैसे पंजाबियों को मेहनती समझा जाता है, अधिक उम्र के लोगों को दक्षिणानुषी समझना आदि। रूढ़ियुक्तियों की एक खास विशेषता यह है कि जब हमें मालूम हो जाता है कि कोई व्यक्ति समूह का सदस्य है तो उसी के आधार पर हम यह मान लेते हैं कि उसमें उस समूह के पाए जाने वाले गुण भी होंगे। क्रेच और क्रचफील्ड के अनुसार रूढ़ियुक्ति संप्रत्यय जिसने कि समाज मनोविज्ञान की विचारधारा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है दो भिन्न चीज़ों को बनाती है। पहला, यह एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो समाज में किसी विश्वास के प्रति निर्मित होती है। यह समाजशास्त्री और सांख्यिकी संप्रत्यय है, जैसे यह भावना कि कर्मचारी पूंजीपतियों की तुलना में ईमानदार होते हैं। दूसरा, इसमें विश्वासों को सरलीकृत करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है, इसलिए सभी विश्वास कुछ हद तक रूढ़ियुक्तियों की श्रेणी में आते हैं। रूढ़ियुक्तियों में परिवर्तन, कार्टेजर और बेली, गिलबर्ट और कॉलिंस, क्रॉपमैन एवं वर्ल्स ने 10 समूहों के लिए 84 शब्दों को व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित थे। प्रिंसन ने पढ़ने वाले 100 विद्यार्थियों को दिए 3 अध्ययनों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि रूढ़ियुक्तियों में वांशिक मतके हैं। प्रिंसन अध्ययन में यह स्पष्ट है कि रूढ़ियुक्तियों में परिवर्तन होते हैं। कॉर्लिंस, क्रॉपमैन और वॉल्सन ने बताया है कि रूढ़ियुक्तियों में रुचिकर परिवर्तन होते हैं तथा साथ ही साथ कुछ एकरूपता भी दिखाई पड़ती है, जैसे 1932 के अध्ययन में अमेरिकी लोगों को मेहनती और बुद्धिमान माना गया था, जबकि 1967 के अध्ययन में उन्हें भौतिकवादी और महत्वाकांक्षी माना गया। इसी प्रकार अंग्रेजों को 1932 के अध्ययन में खिलाड़ी गुणों से संपन्न और बुद्धिमान माना गया था, लेकिन 1967 के अध्ययन में उन्हें रूढ़िवादी स्वीकार किया गया। 1950 के अध्ययन में जर्मन और जापानियों की रूढ़ियुक्तियों में द्वितीय विश्व का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अश्वेतों के प्रति भी रूढ़ियुक्तियों में परिवर्तन हुआ, अब उन्हें कम आलसी और कम रूढ़िवादी माना जाता है। 1969 में प्रिंसटन विद्यार्थियों पर किए गए एक दूसरे अध्ययन में भी रूढ़ियुक्तियों का वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन में भी पहले के अध्ययनों में प्रयुक्त विधि का प्रयोग किया गया, लेकिन इस अध्ययन में भाग लेने वालों को सार्वजनिक तथा निजी रूढ़ियुक्तियों के विषय में बताने को कहा गया। सार्वजनिक रूढ़ियुक्तियों में व्यक्तियों की वे विशेषताएं आएंगी जिसे सामान्य अमेरिकी जनता मानती है, जबकि निजी रूढ़ियुक्तियों में व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा रहती है। सार्वजनिक रूढ़ियुक्तियों के परिणाम पहले के अध्ययनों के परिणामों की भांति ही प्राप्त होते हैं, लेकिन निजी रूढ़ियुक्तियों के प्रतिकूल विशेषताएं कम बदलाई जाती हैं, केवल अनुकूल विशेषताएं ही ज्यादातर सामने आती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों प्रकार की रूढ़ियुक्तियां रखता है और परिस्थितियों के अनुसार उनका उपयोग करता है। रूढ़ियुक्तियां की प्रतिक्रियाएं। रूढ़ियुक्तियों के संदर्भ में सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के कुछ विशेष गुणों अथवा विशेषताओं को मानना है। इसमें सकारात्मक एवं निषेधात्मक भावना भी पाई जाती है, यद्यपि कि वह बात सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रूढ़ियुक्तियों में दोनों अनुकूल अथवा प्रतिकूल गुण पाए जाते हैं। बुचानन के यूनेस्को अध्ययन में रूसी लोगों को मेहनती, बहादुर एवं प्रगतिशील बताया गया था। कैम्बेल और लेवाइन ने अनुकूल और प्रतिकूल तीन गुणों में संबंध पाया है जो कि रूढ़ियुक्तियों की प्रतिक्रियाओं के जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए उन लोगों ने सुझाव दिया कि जब प्रतिकूल तीन गुणों को अपने समूहों में होना स्वीकार करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उन गुणों को भी बाहरी समूहों में भी पाया जाना स्वीकार करेंगे। बाहरी समूह के लोग यह स्वीकार करते हैं कि वे गुण उनमें पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वे अनुकूल गुण लगे, जैसे अंग्रेज लोग अपने ही संयमी और दूसरे की एकांतता का आदर करने वाले मानते हैं, जबकि अमेरिकों को अंतर्वेदी, दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करने वाला, ढीठ और उत्साही मानते हैं। अमेरिकियों ने अंग्रेजों को दम्भी, उदासीन और रूखा माना है और वे अपने को स्नेही, निर्गामी और खुले हृदय वाला मानते हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दो समूह एक जैसा गुण रखते हैं, लेकिन बाहरी समूह के लिए प्रतिकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने समूह के लोगों के लिए निष्ठा शब्द का प्रयोग करना और दूसरे समूह के लोगों के लिए गोत्रवादी कहना, गर्व अहंकार कहना, अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहने होने वाले लड़ाकू कहना इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं जब लोग उसी भावना को व्यक्त करने के लिए अपने समूह के लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं और उसी बीच को बाहरी समूह के लोगों के लिए प्रतिकूल भाव मिश्रित करके व्यक्त करते हैं। इन अध्ययनकर्ताओं ने एक बात और स्पष्ट की है कि किसी समूह के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी के आधार पर हम ही लोग और बहुत सी विशेषताओं को जोड़ लेते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति संयमी और हम उसे शांतिप्रिय भी मान लेते हैं, कोई व्यक्ति यदि महत्वाकांक्षी है तो वह चालाक भी होगा। इससे इस बात सिद्ध होती है कि रूढ़ियुक्तियों में गुणों का समुच्चय अथवा समूह होता है। इस प्रकार इन गुणों में आपसी समानता होती है। रूढ़ियुक्तियों की सत्यता या असत्यता। समाज मनोवैज्ञानिकों ने रूढ़ियुक्तियों की सत्यता पर बल दिया है। चूंकि रूढ़ियुक्तियों में यह बात मानी जाती है कि किसी वर्ग अथवा समूह के सभी सदस्य व्यक्तियों में एक ऐसा ही गुण होता है, असत्यता की बात यहीं से आरंभ होती है। मनोवैज्ञानिकों में यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि समाज में व्यक्तित्व विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग सील गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि किसी प्रकार के सामान्य और तौर पर कोई विशेषता पाई जाती है, इसी के साथ साथ व्यक्तित्व विभिन्नता भी होती है, तो इसमें कोई असत्यता नहीं। वास्तव में रूढ़ी युक्तियों का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है अथवा ये बिल्कुल असत्य होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ सत्यता भी पाई जाती है जिसे घुमाकर कहा जाता है। ऊपर बताया गया है कि दो समूह यद्यपि एक जैसी विशेषताओं का बावजूद एक दूसरे का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि उनकी समानता नहीं प्रकट होती है, लेकिन समाजशास्त्रीय तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ रूढ़ी युक्तियों में बहुत सत्यता भी पाई जाती है। जातिगत समूहों में एक ऐसी विशेषताएँ होती हैं। मानवशास्त्रीय अध्ययनों में स्पष्ट है कि बहुत सी रूढ़ी युक्तियाँ वास्तविक विशेषताओं पर आधारित होती हैं। समाज में रूढ़ी युक्तियों का लाभ। सामान्य धारणा यह है कि रूढ़ी युक्तियाँ निषेधात्मक भूमिका निभाती हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। इसमें समाज को लाभ भी है। यह समाज निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, रूढ़ी युक्तियाँ मानव व्यवहार को निर्देशित करती हैं। दूसरा, रूढ़ी युक्तियों का व्यक्ति को प्रतिमाएँ प्रदान करती हैं। तीसरा, रूढ़ी युक्तियों की मदद से भविष्यवाणी की जा सकती है। चौथा, हमारा व्यवहार रूढ़ी युक्तियों से नियंत्रित होता है। पांचवा, रूढ़ी युक्तियां प्रचार में सहायक होती हैं।